नमस्ते, मैं आराव हूँ। नई नात्री के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा। केविन वरबाक की द ब्लॉकचेन एंड द न्यू आर्किटेक्चर ऑफ ट्रस्ट सूचना नीति कानून व्यवसाय और डिजिटल तकनीक के संगम पर लिखी गई विश्लेषणात्मक पुस्तक है। यह बिटकॉइन या ब्लॉकचेन को केवल तकनीकी आविष्कार, निवेश साधन अथवा बैंकों के विकल्प के रूप में नहीं देखती। इसका मुख्य प्रश्न अधिक बुनियादी है। लोग अनिश्चितता और जोखिम की स्थिति में किसी लेन देन रिकॉर्ड या व्यवस्था पर भरोसा क्यों करते हैं? वरबाक उस लोकप्रिय दावे की आलोचना करते हैं कि ब्लॉकचेन पूरी तरह ट्रस्टलेस है। उनके अनुसार यह भरोसे को हटाता नहीं, बल्कि उसे कोड, क्रिप्टोग्राफी, वितरित सत्यापन, नियमों और संस्थागत प्रक्रियाओं के अलग संयोजन में व्यवस्थित करता है। पुस्तक समझाती है कि सार्वजनिक ब्लॉकचेन में किसी एक नियंत्रक की अनुपस्थिति उपयोगी हो सकती है, लेकिन कानून, जवाबदेही और विवाद निपटान की जरूरत समाप्त नहीं होती। इसलिए इसका उद्देश्य उत्साह और भय दोनों से अलग होकर ब्लॉकचेन की वास्तविक सामाजिक क्षमता, सीमाओं और शासन संबंधी प्रश्नों को स्पष्ट करना है। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले, ट्रस्टलेस दावे के पीछे भरोसे की नई व्यवस्था। पुस्तक का सबसे महत्वपूर्ण हस्तक्षेप यह है कि ब्लॉकचेन को ट्रस्टलेस कहना भ्रामक है। बिटकॉइन जैसी प्रणाली में व्यक्ति को किसी बैंक जैसे एकल मध्यस्थ पर निर्भर नहीं रहना पड़ता, पर उसे सॉफ्टवेयर, क्रिप्टोग्राफिक नियमों, नेटवर्क के सत्यापनकर्ताओं, कुंजी प्रबंधन और लेन देन दर्ज होने की प्रक्रिया पर भरोसा करना ही पड़ता है। अंतर यह है कि भरोसा किसी एक संस्था की प्रतिष्ठा में केंद्रित होने के बजाय तकनीकी और संगठनात्मक घटकों में बांटा जाता है। वितरित लेजर का मूल्य इस बात में है कि अनेक प्रतिभागी एक साझा रिकॉर्ड की स्थिति पर सहमत हो सके और दर्ज लेन देन को मनमाने ढंग से बदलना कठिन हो। इससे एकल विफलता बिंदु, रिकॉर्ड मिलान की लागत और कुछ मध्यस्थीय जोखिम घट सकते हैं। फिर भी कोड किसने लिखा, नियम कौन बदल सकता है, एक्सचेंज या वॉलेट प्रदाता कितने विश्वसनीय है और चोरी या गलती की स्थिति में सहायता किससे मिलेगी, ये भरोसे के प्रश्न बने रहते हैं। वरबाक का ढांचा तकनीकी विकेंद्रीकरण और वास्तविक जीवन के भरोसे में फर्क कराता है। इसीलिए पुस्तक का निष्कर्ष ब्लॉकचेन को भरोसे का अंत नहीं, भरोसे की वास्तुकला में परिवर्तन मानता है। दूसरा, पीयर टू पीयर, लेवायथन और मध्यस्थ भरोसे की तुलना। वरबाक ब्लॉकचेन को समझने के लिए भरोसे की पुरानी व्यवस्थाओं की तुलना करते हैं। पीयर टू पीयर भरोसा व्यक्तिगत संबंधों, साझा मूल्यों, समुदाय की प्रतिष्ठा और सामाजिक नियंत्रण पर टिकता है। छोटे समूहों में यह प्रभावी हो सकता है, लेकिन अजनबियों के बीच और बड़े पैमाने पर इसकी सीमा सामने आती है। दूसरा मॉडल लेवायथन भरोसा है, जिसमें राज्य कानून, अदालत और प्रवर्तन के माध्यम से निजी समझौतों को विश्वसनीय बनाता है। दो अनजान पक्ष इसलिए भी अनुबंध कर पाते हैं क्योंकि उन्हें भरोसा होता है कि विवाद होने पर कानूनी उपाय उपलब्ध होगा। तीसरा मॉडल मध्यस्थ भरोसा है, जिसमें बैंक, प्लेटफॉर्म, एक्सचेंज या अन्य केंद्रीय संस्था पहचान, भुगतान, रिकॉर्ड और विवादों का प्रबंधन करती है। ब्लॉकचेन इन मॉडलों से अलग साझा लेजर और सहमति नियमों पर आधारित भरोसा प्रस्तुत करता है, पर पुस्तक इसे पूर्ण विकल्प नहीं मानती। व्यावहारिक प्रणालियां अक्सर इन सभी रूपों को मिलाती है। उदाहरण के लिए, कोड लेन देन सत्यापित कर सकता है, लेकिन पहचान, उपभोक्ता सुरक्षा और धोखाधड़ी के समाधान के लिए मध्यस्थ या राज्य की भूमिका जरूरी हो सकती है। यह तुलना बताती है कि ब्लॉकचेन अपनाने का प्रश्न केवल तकनीकी दक्षता का नहीं, उपयुक्त भरोसा व्यवस्था चुनने का भी है। तीसरा, भरोसा, स्वतंत्रता और सुविधा के अनिवार्य समझौते। पुस्तक ब्लॉकचेन डिजाइन को तीन प्रतिस्पर्धी लक्ष्यों के बीच समझौते के रूप में रखती है, भरोसा, स्वतंत्रता और सुविधा। अधिक स्वतंत्रता का अर्थ हो सकता है कि उपयोगकर्ता अपनी संपत्ति और पहचान पर स्वयं नियंत्रण रखे, बिना केंद्रीय अनुमति के नेटवर्क में भाग ले और नियमों को खुले रूप में जांच सके। लेकिन यही स्वायत्तता उपयोगकर्ता पर निजी कुंजी की सुरक्षा, त्रुटि सुधार और निर्णय लेने का बड़ा बोझ भी डालती है। सुविधा बढ़ाने के लिए सेवाएं पासवर्ड पुनर्प्राप्ति, ग्राहक सहायता, तेज लेन देन या सरल इंटरफेस दे सकती है, मगर इसके बदले वे फिर से कुछ केंद्रीय नियंत्रण और भरोसे की मांग करती है। इसी तरह अपरिवर्तनीयता रिकॉर्ड की विश्वसनीयता मजबूत कर सकती है, पर गलत भुगतान, धोखाधड़ी या बदली हुई परिस्थितियों में सुधार कठिन बना देती है। वरबाक का तर्क है कि किसी भी ब्लॉकचेन प्रणाली को इन तनावों के बारे में साफ होना चाहिए। केवल विकेंद्रीकरण को अपने आप में लक्ष्य मानना उपयोगकर्ताओं और संस्थाओं की वास्तविक जरूरतों को अनदेखा करता है। डिजाइनरों को पूछना चाहिए कि किस जोखिम को कम करना है, किस पक्ष को निर्णय का अधिकार चाहिए और गलती होने पर उपाय क्या होगा। यह दृष्टि ब्लॉकचेन को विचारधारा नहीं, संदर्भ के अनुसार चुने जाने वाले संस्थागत डिजाइन के रूप में देखती है। चौथा, विकेंद्रीकृत नेटवर्कों में शासन और विवाद निपटान की जरूरत। ब्लॉकचेन का एक आकर्षक वादा यह है कि पूर्व निर्धारित नियमों के अनुसार व्यवस्था अपने आप चलेगी। वरबाक दिखाते हैं कि व्यवहार में नियमों की व्याख्या, सॉफ्टवेयर में बदलाव, सुरक्षा संकट और हितों के टकराव ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें केवल स्वचालित सहमति से हल नहीं किया जा सकता। किसी गंभीर तकनीकी दोष, धोखाधड़ी या विभाजन की स्थिति में समुदाय को तय करना पड़ता है कि कौन सा समाधान वैध है। यहाँ तथाकथित ब्लॉकचेन विरोधाभास उभरता है। पूरी तरह विकेंद्रीकृत होने का दावा करने वाली प्रणालियां भी संकट के समय डेवलपर्स, प्रमुख प्रतिभागियों या संगठित प्रक्रियाओं पर निर्भर हो सकती हैं। पुस्तक इस तथ्य को विफलता मात्र नहीं कहती, बल्कि इसे शासन को स्पष्ट बनाने की चुनौती मानती है। मतदान, विशेष प्रकार के अनुबंध, मध्यस्थता और विवाद समाधान जैसी व्यवस्थाएं अलग परिस्थितियों में उपयोगी हो सकती है। मुख्य बात यह है कि शासन की शक्ति वास्तव में कहाँ है, किन नियमों के तहत प्रयोग होगी और उससे प्रभावित लोगों को क्या सुरक्षा मिलेगी। कानून से दूरी बनाना भी स्थायी समाधान नहीं है। मुख्यधारा की आर्थिक गतिविधियों में प्रवेश के लिए जवाबदेही, उपभोक्ता संरक्षण और वैधता के संस्थागत प्रश्नों का सामना करना ही होगा। अंत में, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, कानून और मुख्यधारा अपनाने की सीमाएं, वरबाक ब्लॉकचेन को कानूनी तकनीक के रूप में देखते हैं, क्योंकि यह केवल सूचना दर्ज नहीं करती बल्कि नियमों के अनुसार व्यवहार को सक्षम या सीमित भी कर सकती है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इसका प्रमुख उदाहरण है। वे निश्चित और स्पष्ट शर्तों वाले लेन देन को स्वचालित कर सकते हैं, जैसे पूर्व निर्धारित घटना पर भुगतान या संपत्ति का हस्तांतरण। इससे अनुपालन और समन्वय की लागत कुछ मामलों में घट सकती है, लेकिन पुस्तक इस धारणा को चुनौती देती है कि कोड हर अनुबंध का विकल्प बन जाएगा। वास्तविक अनुबंधों में अस्पष्ट भाषा, बदलती परिस्थितियां, सद्भावना, अनुपातिकता और संदर्भ आधारित निर्णय शामिल होते हैं। कंप्यूटर कोड केवल उन शर्तों को लागू करता है जिन्हें पहले से पर्याप्त स्पष्टता से लिखा गया हो। वह यह तय नहीं कर सकता कि किसी असाधारण घटना में न्यायसंगत परिणाम क्या है, इसलिए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और कानूनी अनुबंध को समान मानना जोखिमपूर्ण है। पुस्तक का व्यावहारिक संदेश है कि ब्लॉकचेन व्यवस्था को कानून के विरुद्ध खड़ा करने के बजाय कानूनी ढांचे के साथ जोड़ा जाए। विनियमन हमेशा नवाचार का शत्रु नहीं होता, क्योंकि वह पहचान, अधिकार, दायित्व और उपचार की स्पष्टता देकर व्यापक उपयोग के लिए आवश्यक भरोसा पैदा कर सकता है। निष्कर्ष में, द ब्लॉकचेन एंड द न्यू आर्किटेक्चर ऑफ ट्रस्ट उन पाठकों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है जो ब्लॉकचेन पर नारेबाजी से आगे बढ़कर उसके संस्थागत अर्थ को समझना चाहते हैं। नीति निर्माता, वकील, वित्त और प्लेटफॉर्म व्यवसाय से जुड़े पेशेवर, तकनीक प्रबंधक, शोधार्थी और गंभीर सामान्य पाठक इससे लाभ ले सकते हैं। तकनीकी पाठक को यह समझने में मदद मिलती है कि श्रेष्ठ कोड भी सामाजिक और कानूनी संदर्भ से अलग काम नहीं करता। गैर तकनीकी पाठक के लिए पुस्तक यह स्पष्ट करती है कि वितरित लेजर, सहमति और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जैसे विचार व्यवहार में किन जिम्मेदारियों और जोखिमों से जुड़े हैं। इसका व्यावहारिक लाभ बेहतर प्रश्न पूछने में है। क्या यहाँ केंद्रीय मध्यस्थ वास्तव में समस्या है? किसे भरोसा देना होगा? गलती पर क्या उपाय होगा और शासन किसके हाथ में है? समान विषय की अनेक पुस्तकों में या तो क्रिप्टो परिसंपत्तियों के मूल्य पर जोर मिलता है या ब्लॉकचेन के क्रांतिकारी दावों का प्रचार। वरबाक की अलग पहचान यह है कि वे भरोसे, कानून और शासन को केंद्र में रखते हैं। वे न तो ब्लॉकचेन को सर्वव्यापी समाधान मानते हैं, न उसे निरर्थक ठहराते हैं। यह संतुलित दृष्टि पुस्तक को विशेष बनाती है। हालांकि विनियमन के कुछ उदाहरण समय के साथ पुराने हो सकते हैं, उसका मूल वैचारिक ढांचा आज भी उपयोगी है, क्योंकि वह तकनीक से अधिक उन स्थायी प्रश्नों पर केंद्रित है जो किसी भी डिजिटल व्यवस्था की वैधता और विश्वसनीयता तय करते हैं। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं केविन वेरबाह, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए अमेज़न लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।